نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دار قرآن 2025 DQ 2025، اور آج اس میں سے پارہ نمبر 22. 22 ہمارا گول ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک پہ ایک پارہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام بھی ہوتا ہے. کئی باتیں ہیں جو سارا دن اپنی کہی بھی مجھے بھی یاد آتی ہیں. آپ سنتے ہیں کہ دن آپ کو بھی کچھ یاد آتا ہوگا. چلیے شروع کرتے ہیں دل کی گہرائی سے پیارے نبی کے لیے درود شریف کا تحفہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیارے نبی سراج منیر تھے. آج وہ پارا ہے جس میں یہ آیت بھی آئے گی، جو ہماری تھیم آیت کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کا ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. آج آپ اس پورے پارے میں جو کچھ پڑھنے والے ہیں نا، اس کو ابھی سے دل میں محسوس کر کے کہیے الحمدللہ علی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کا پارا وہ پارا ہے جس میں اللہ کے نبی آپ کو ہر اینگل سے دکھیں گے. جنگ کے اندر ایک لیڈر کیسا، گھریلو زندگی میں ایک شوہر کیسا، حق اور باطل کا مارکا ہو اور لوگوں کا پریشر ہو کہ باطل کی طرف جھک جائیں، تو آپ حق کے مقابلے پہ کھڑے ہونے والے کیسے ہیں، اور پھر حق کی دعوت دیتے ہوئے جب انسان کو مدتیں گزر جائیں اور لوگ اس کی طرف کان بھی نہ دھریں، تو ایسے وقت میں ایک صبر کے ساتھ جمے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ عمل کرتے ہوئے یا اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے جمنے والے انسان کیسے ہوتے ہیں. اگر میں اللہ کے نبی کے لیے ایک جملہ بول دوں نا، کہ ہی واز آل راؤنڈر، ہی واز ون مین وکٹری. کبھی کبھی ایک شخص ہوتا ہے، اس کے ہونے سے اور اس کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. پیارے نبی وہ نہیں تھے جن کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑے، بلکہ آپ دوسروں پہ اثر ڈالتے تھے. ان کے ہونے سے بھی فرق پڑتا تھا، اگر وہ کہیں نہیں ہوتے تھے تو اس سے بھی فرق پڑتا تھا. اور سراج منیر وہ ہستی تھی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ تم اپنے نبی پہ درود پڑھو. تم بھی درود بھیجو، اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اور الحمدللہ آج کے بارے میں وہ آیت بھی آ رہی ہے. تو کہیے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. ہم اللہ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے آپ پر درود پڑھیں، اور ساتھ ہی پھر ہم محمد عربی پہ چلتے ہیں. پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی پر ایک وحی آئی، اس کے بعد بے چینیاں بڑھ گئیں، اور بھی اور آپ کو فیلنگ آ رہی تھی، کبھی تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو پہلے اقرأ بسم ربی کا کی آیتیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک سے ایک خوبصورت پیغام دیتے آ رہے تھے، ان ساری چیزوں کو لینے کے لیے جو آپ کے پاس موجود تھیں اور آپ نے انسانیت کو دینی تھی. یہ بھی ایک انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ اس کو کسی کام کا بنا دے. پہلی مکمل سورت جو اللہ کے نبی کو دی گئی تھی وہ سورت فاتحہ تھی، اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا. آہستہ آہستہ آپ کو وہی اخذ کرنا بھی آ گئی، آپ اس چیز کو لینے لگے. ایسی جیسے نیا کام شروع کرے تو ہاتھ چلتے چلتے ذرا سا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ اللہ کی رحمت سے کام شروع ہوتا ہے تو انسان گیئر اپ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کے دل میں اس چیز کا خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اب میں اس کا حق کیسے دوں گا. یاد رکھیے کہ بیسک ریڈ جو ہوتا ہے نا، وہ تو بندے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وحی کے سلسلے کے شروع ہونے میں جو بیسکس تھے نا، توحید، رسالہ، ایمان بالآخرہ، یہ فطرت میں گندے ہوئے ہیں. ہماری فطرت بتاتی ہے کہ انسان کو اس چھوٹی سی زندگی سے گزر کر ایک بہت بڑی دنیا میں جانا چاہیے، جہاں اچھے کام کرنے والوں کو اس کے بدلے ملیں और जिन लोगों ने गलत काम किए अल्लाह ताला उनको वहाँ उसकी सज़ा दे या कम से कम उनकी जवाबदेही हो। तो अल्लाह के नबी पर ये जो इब्तदाई आयतें उतरती गईं ये सारी चीज़ें आपके बारे में क्या बताती थी कि आपको अब एक बहुत बड़ा काम करना है। सूरह मुज़म्मिल की आयत कीजिए, इन नाशियतुल्लैल हिय अशद्दु वतम वअक्वमु क़ीला। फिर आगे उसमें एक जुमला क्या आता है, इन लका फिन नहारी सबहन तवीला। फिर उसमें एक जुमला क्या आता है कि हम आपके ऊपर एक बड़ा बोझ डालने वाले हैं। तो ये सारा कुछ आप अपनी हस्ती पे महसूस कर रहे थे और आप अपनी बीवी घर में जो थी और अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हो और इसी तरह घर के दो लोग एक जैद और एक अली रजी अल्लाह अन्हुमा, ये दोनों आपके साथ दीन के सफ़र में शामिल हो चुके थे। तो लिखिए चार लोगों ने नबी सल्लम को सपोर्ट किया, यानी फौरन ही उनके ऊपर जब बात आई तो आप पहुँचाते गए और फिर उसके बाद तो आपकी ज़िंदगी का ये मिशन ही बन गया। ख़ास तौर पे जब याहल मुद्दसर कुम फानजिर की आयतें नाजिल हुई तो आपको ये धुन लग गई थी कि मैंने इस पैगाम को देना है। फिर इसी तरह रिवायत से पता चलता है बानज़ीर अशीरत कल अक्रबीन, अभी 2 दिन पीछे हमारे पारे में गुजर गई 19 पारे में, ये आयत के अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए आगाह कीजिए वॉर्न कीजिए, उसके बाद फिर आपने अपने रिश्तेदारों को भी जमा किया। तो बहरहाल हुआ क्या कि फरिश्ता आता गया, वही का पैगाम आता गया। अब जब ये दावत का सिलसिला शुरू हुआ तो थोड़ी हसल बसल शुरू हो गई सोसाइटी में, कुछ मुखालफत है और वही बात है कि मुखालफतों के लिए तो तिनके के सहारे भी काफ़ी होते हैं। फिर वही बीच में जब रुकती तो लोग आपको ताने देते, जैसे मिसाल अगर आज हमारा दौरे कुरान हो रहा है तो हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं, हम एवरीडे सुन रहे हैं, हो सकता है बाद में अगले सालों में किसी भी ग्रुप में इसको हफ्ते के 5 दिन के साथ कोई कर दे, छुट्टियां दे दे, ब्रेक्स दे दे, मुमकिन है ना। अब ये सारा कुछ तो एक नेचुरल था, तो ये तो नहीं था ना कि जिब्राइल हर वक्त आपके साथ हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या कहिए कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को और आपके मुकाम को नहीं समझे थे, ज़रा सा कुछ होता तो आप ताने देते, क्या बात है जी, ये तो खूब नबी हैं, 2 4 दिन से आसमान से बातें हो रही हैं, आप अपने ऊपर लीजिए। जब नया नया कुरान आपकी ज़िंदगी में आता है आपको भी बड़ी बातें होनी है, और जो आ चुके हैं उनको बातें हो चुकी हैं और माशाल्लाह वो ठंडे हो चुके हैं। जो नया नया दीन की तरफ आता है ना वो आज का मुहाजिर है, सब छोड़ के आता है, बड़ी कशिश वाली ज़िंदगी छोड़ के आता है। एक मसलक है मुसलमान कहते हैं खुद को, तो उससे एक बच्ची कुरान सुन्नत की तरफ हमारी क्लासेस में आना शुरू हो गई, यानी उससे छोड़कर इधर आई, तो उसने मुझे एक मौके पे अपने उस सोच का नाम लेकर, जो कि मैं नहीं देती क्योंकि नूरुल कुरान की पॉलिसी नहीं है, असल मकसद मुराद जो होता है कि उससे नसीहत ली जाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि ये जो सोच है इस फिरके की, इसको छोड़कर अगर कोई कुरान सुन्नत पे आ जाए ये अल्लाह को उस पर एहसान है। वो अपनी फीलिंग से बता रही थी, क्यों उन्होंने इतनी अमेंडमेंट्स कर ली, जो मर्जी पहन लो, जो मर्जी खा लो, शराब भी हलाल है, एक लड़का और एक लड़की रह सकते हैं अलग, यानी मीन फ्लर्ट नहीं करो, हाँ सीरियसली किसी एक लड़की लड़के को इजाज़त दे दो, ये भी जायज़ वो भी, और हर हफ्ते या जुम्मे में आकर हमारी जगह पे आकर इतना चंदा दे दो तो हम तुम्हारे गुना बख्शवा देंगे, फलां साल में एक दफ़ा आएगा हमारा बड़ा बुजुर्ग जो भी है तो वो आप लोगों के गुना बख्शवा देगा। उसके लफ्ज़ मुझे नहीं भूलते, उसने ह्यूस्टन में ये बात मुझे आज से कोई 20 साल पीछे कही होगी, शायद 18 या 15 ईयर्स है इसके अराउंड कुछ होंगे, और उसने कहा कि ये अल्लाह का मेरे पे फजल है कि मैं इतनी चमक दमक में से निकल के आई हूँ। फिर उसने मुझे पेपर दिखाया, मैं कभी ना मानती ऐसी बात और कभी कोट भी ना करती, उसमें पूरा उनके उस गिरोह या जो भी नाम नहीं लेना चाह रही उसकी तरफ से जारी किया हुआ पेपर था, ये गुनाह हो जाए तो इस जगह आकर इतना चंदा दे दें, ये हो जाए तो यहाँ आकर सफाई कर जाए, ये कर ले वो कर ले, और वो हफ्ते में एक दिन विद फैमिली अपनी उस जगह को या जो उनके नाम कहलवाती हैं उन जगहों को ऐसे वो लोग चमकाते थे कि जैसे चमकाने का हक है, और फिर मुतमईन पूरा हफ्ता जो मर्जी करो, वही पार्डन वाला तरीका ही है, जैसे आज भी तो यही है ना क्रिश्चियनिटी में, जो मर्जी कर लो बाद में जीसस के नाम पे आके कुछ सदका दे दो। तो याद रखिएगा ये सच्चा पैगाम जब भी आएगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये जो बातें हैं ना इसकी फिक्र ना क्या करें, आपको मैंने पिछले पारे में सुनाई थी ना लोगों की बातों से क्या आता है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी बातों से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए, इंसान होने के नाते इंसान को थोड़ी सी रिजेंटमेंट तो होती है, तबीयत पे बोझ भी आता है, इसलिए कभी कभी आप उदास हो जाते थे। कभी कुछ कभी कुछ। और एक दफा तो ऐसा हुआ कि आपकी हमसाया अबू लहब, कुरान ने नाम लिया तो हम भी लेंगे, उसकी बीवी तन्हा देती है, क्या बात है, तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया ना उस बिल्ला। जिब्राइल को शैतान कहते थे, वही ना आई तो ये बातें कर दी। अच्छा, ये हो गया वो हो गया, ताने अल्लाह ताला ने कहा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिन अलूला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। यानी अल्लाह ने दिल के जख्मों पे फाहे रख दिए कुरान की आयतों के। आज भी अगर आप लोगों के सताए हुए हैं किसी वजह से, अपनी जाती वजह या दीन की को वजह, फाहा ये कुरान है, ये बैंडेज है। कुरान हील्स द ब्रोकन हार्ट्स एंड इट्स सॉफ्टन द हार्डन हार्ट्स। कुरान दुखी दिलों की दवा है, उनको जोड़ता है और सख्त दिलों को नरम करता है। और वह दोहा जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप देखते हैं, गवाह है सूरज की रोशनी का, ऑप्टिमिज्म सिखाएगी प्यारे नबी को। और रात की तारीकी जब वो छा जाए, ये है जिंदगी धूप और छाँव, कभी खुशियाँ कभी गम, कभी की रातें लंबी कभी किस दिन का लंबे, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा ना वो आपसे नाखुश है। हाँ, आपके लिए अंजाम इब्तदा से बेहतर होगा। अगर आपकी भी कभी क्लास छूटे ना तो रोया करें, आज मेरी क्लास क्यों छुट्टी, आज मैं देर से क्यों गई, आज मैं जल्दी क्यों आ गई, आज ये क्यों, आज बीच में बैठे बैठे मेरी तवज्जो कहीं और क्यों चली गई। फिर होया करें कि अल्लाह हमारे लिए इस नेमत को हमेशा के लिए कर दे, इसको दवाम दे दे। तो अल्लाह ताला ने पूरी सूरत दोहा में आपको बहुत प्यारी बातें बता दी कि अल्लाह आपका रब आपको वो देगा जो पहले से अच्छा होगा, खुश हो जाएंगे। फिर यतीम थे तो क्या आपको अल्लाह ताला ने ठिकाना नहीं दिया। तर्जमा तो आप सभी को आता है ना, आप मोहताज थे आपको मालदार कर दिया, तो आप फिर यतीम के साथ सख्ती ना करें, साहिल को ना झिड़के, और अल्लाह की नेमतों का चर्चा करें। वम अभी नेमति रब्बी का फहदिस, तहदीस नेमत अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती है। अब यहाँ से समझ आ रहा है कि अल्लाह के नबी का दिल कितना उदास था और अल्लाह ताला अपनी रहमतों से उसको ढांप रहा है, नेमतों का एहसास हो रहा है। फिर वही मुस्तकिल आने लगी, आपके जिब्राइल आते, आपको अल्लाह की आयतें सुनाते बताते, यानी फिर आप जिसको कहते हैं ना डे टू डे गाइडलाइन मिलने लग गई। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बेसिक्स भी, छोटी छोटी जो चीज़ें थी उस दौर के हिसाब से वो भी बता दी। फिर इसी तरह कुछ और चीज़ें भी थी, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को पढ़कर ये कह सकते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बीवी मिल गई, घर का सुकून था, और बाहर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसा प्यारा साथी मिल गया जिसको कुरान ने साहिबु कुम भी कहा है एक जगह। ये वो वक्त था कि जब एक मुतमईन जिंदगी थी। इसी तरह हजरत अली आपके जेरे परवरिश थे, आपके साथ रहते, जो आप करते वो करते, बीबी हदीजा जो करती वो भी करते। अब एक बच्चा सा हो और वो आपके साथ नमाजें पढ़ रहा है, रुकू सजदे कर रहा है, छोटी छोटी आयतें याद कर रहा है, तो घर का माहौल कितना प्यारा होगा। हज़रत अली की तरबियत नबी सल्लम से अल्लाह ने करवाई, ये जुमला ज़रूर लिखिएगा। हर तरह की मिसाल मौजूद है, अपना बेटा नहीं है लेकिन बाहर का बेटा, कल इसी अली को अल्लाह ने आपका दामाद बनवाना है, क्योंकि फातिमा का शौहर रदी अल्लाह अन्हा वो ज़रूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता हो, क्योंकि इतनी पाकीज़ा औरत जिसको हम ज़ाहरा कहते हैं। और इसी तरह से वो रुकू और सजदे शुरू से उनकी ज़िंदगी में आ गए। अभी नमाज अपनी असल शक्ल पे तो नहीं थी, लेकिन चूंकि इबादत के तरीके तो हर मजहब में पहले से भी थे, अल्लाह के नबी को भी जिब्राइल ने बेसिक चीज़ें बता दी, रुकू क्या, सजदा क्या, कैसे इबादत करे, तो इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी, और हज़रत जैद जो है वो तो वैसे भी ज़रा से बड़ी उम्र के थे, वो भी ये सब करते गए। और इस तरह से आपकी ज़िंदगी का वो दौर शुरू हो गया कि जिसमें आप महसूस करने लगे कि अल्लाह के जो वादे थे वो मेरे साथ बहुत सच्चे हुए। और इसी तरह से अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में अल्लाह के नबी के जुमले हैं कि मैंने जिस पे भी दीन पेश किया उसने ज़रा सा तो सोचा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो उन्होंने बिल्कुल देर ना लगाई। इनके बाप का नाम अबू कुहाफा था, कबीला तमीम से ये ताल्लुक़ रखते थे और पहले से ही दोस्ती थी, आपकी सच्चाई और पाकबाजी से बहुत मुतासिर थे, इसीलिए आपसे मोहब्बत भी करते थे, बेइंतहा अदब और एहतराम करते आपका, आपकी सोहबत को गैर मामूली नेमत समझते। और जिसको उर्दू में आप कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है, अबू बकर के दिल को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से राह थी। मोहब्बत भी थी, खलूस भी था, प्यार भी था। तो जब एक दोस्त से दिल मिला हो और वो दोस्त कहे कि आज रात फरिश्ता आया और उसने ये किया और ये बातें कही, तो उन्होंने एक सेकंड लगाया, अपने अबाई बाप दादा के दीन को छोड़ा और कलमा पढ़कर ईमान ले आए, इस्लाम लाए, दीन की खूबियां बयान की। कहने लगे तो बड़ा ही प्यारा दीन है। एक कॉल आता है के सदक़्त बी अबी अंता व उम्मी व अहलु सिद्क़ी अंता अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने सच फरमाया और सच बोलना आपका काम है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ आप भी एक अमल का नुक्ता लीजिए, आप कुरान पे आ रही हैं ना, अब हमारा ईमान कबूल करना जो ना, वो कुरान कबूल करना है। कुरान से पहले हम एक रस्मी रिवाजी दीनदार थे, हम खानदानी दीनदार थे, माशरे वाला दीन था। कुरान आपको रिवायती छोड़कर असली दीन पे लाएगा। ट्रेडिशनल रिलीजन है आज हमारा, ये हुआ तो ये कर लिया, उस हफ्ते में ये कर लिया, उस महीने में ये किया। कुरान आपको 24 घंटे का मुसलमान बनाता है। वो थुल फिस सिल्मी काफा आपकी दोस्त है, जिनसे आपके दिल मिले हुए हैं, जैसे अबू बकर और नबी सल्लम थे। जरूर प्यार से, मोहब्बत से, दिल सोजी से उसका हाथ पकड़ के रो पड़े कि मुझे तुम्हारी वहाँ बड़ी याद आती है, मैं तुम्हें वहाँ मिस करती हूँ, कल मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगी, लाड दिखाइए, प्यार दिखाइए। और इस तरीके से कि आपके अच्छे ताल्लुक की वजह से वो आपको मिले। और मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखा है अक्सर लोग कुरान कोर्सेज में जो आते हैं ना, वो हमारे फ्लायर से नहीं आते। आज के दौर की मार्केटिंग या जैसे आपके वेबसाइट या फेसबुक या फला फला से देख के ज्यादा लोग नहीं आते, ज्यादा लोग किस चीज से आते हैं? वर्ड बाय माउथ, दोस्तों को, सहेलियों को, उनकी बातों को सुनकर, और उनसे ही आते हैं। क्यों? ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने भी कहा ना कि अलमरु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो दोस्त का दीन अच्छा हो जाए, सही हो जाए, तो फिर अल्लाह की रहमत से बाकियों का भी दीन बेहतर होने लग जाता है। और बहरहाल ये सारा वक्त ऐसा था कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक प्यारे दोस्त का भी साथ दे दिया, बीवी का भी साथ दे दिया, और फिर इसी तरह से घर के अंदर दो बच्चे कह लीजिए या दो डिपेंडेंट्स का भी साथ दे दिया। तो आपके लिए ये वक्त बहुत खुशी का था। इंशाल्लाह इससे आगे अगले सेशन से हम मज़ीद चीज़ें जब सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने नरम दिल, रहम दिल अबू बकर दे दिए, जो एक सरदार थे, सारी कौम उनकी इज्जत करती थी, छोटे बड़े उनका एहतराम करते थे, कुरैश के सबसे ऊंचे घराने से थे वो, वहाँ के भले बुरे सब की निगाह में थे, तजारत उनका पेशा था, और उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत दी, अल्लाह ने खूब दौलत दी और दौलत के साथ दिल भी दिया। कई लोगों के पास दौलत होती लेकिन दिल नहीं होता, दूसरे लफ्जों में कहें कि उनकी दौलत उनके हाथों की बजाय उनके दिलों में होती है। अबू बकर की दौलत जो थी ना, वो उनके हाथों में थी, दिल खोल कर खर्च करते, और जो खर्च करेगा ना, वो लोगों का दिल ले लेगा, ये फितरी सी बात है। घर में मेट है ना, चाहे कई बातें उसको ना भी समझ आए, ना भी पसंद आए ना उनकी, फिर भी उसका घर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बाजी देती बहुत है वो। देखो बाजी ने खाना दिया तो मुझे घर जाके पकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दिल खुला होना, ये भी लिख लीजिए। अबू बकर सिद्दीक को इतनी नेकियों का मौका क्यों मिला? इसलिए कि दिल भी खुला था, हाथ भी खुला था। और मैं गवाही दे सकती हूँ, बड़े बड़े नाम अपनी उंगलियों पे गिन के, जिनके दिल बड़े हों, और दिल बड़े होने की भी फिर दो डायमेंशंस होती हैं मैंने जो देखी हैं। एक तो दिल खोल के खर्च करते हैं, वो लेने वाले नहीं होते, वो देने वाले होते हैं। और दूसरा ये कि फॉरगिव फॉरगेट, मिट्टी पाओ, हर इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने वाले, अच्छा ठीक है जो भी हो जाएगा सही है, अच्छा ऐसे ही ठीक है, उनसे अल्लाह काम बहुत लेता है। बड़ी पोस्ट पे, जिम्मेदारान के लेवल पे वही बंदा पहुंचता है, और पहुंचना चाहिए जिसका हौसला बड़ा हो, जिसका दिल बड़ा हो, जो करजियस हो, जो डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट हो, जो रिस्क टेकर हो। तो अबू बकर सिद्दीक में आपको ये सारी खूबियाँ दिखेंगी। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को ऐसे साथी दिए, और आज भी ऐसे ही होता है। हर बंदे के पास सब कुछ थोड़ी होता है, किसी के पास माल होता है, किसी के पास इल्म होता है, किसी के पास घर होता है, किसी के पास गाड़ी होती है, किसी के पास फोन होता है, किसी का डाटा यूज होने लग जाता है। एक क्यों खराब होता है? ताकि दूसरे का हिस्सा लग जाए। एक ही वक्त में दो लोग मुख्तलिफ दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह मेरी चीज इस्तेमाल हो, दूसरा भी मांग रहा है। तो हमेशा इन चीजों को देखिए। और अबू बकर का साथ मिल जाना, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि अब ये काम बहुत फैलेगा, बहुत फैलेगा। अच्छे साथी जो होते हैं ना, वो किसी कॉज के अंदर हवा की तरह होते हैं कि उस काम को फैला देते हैं। समझ बूझ भी बड़ी थी अबू बकर में, दानाई बहुत थी। मुश्किल से मुश्किल बात चुटकी बजाते में हल कर देते थे। कोई बात नहीं, हो जाएगा। और अगर ऐसा बंदा हो कि छोटी सी बात को बड़ा बना के हर वक्त खोलता ही रहे, हाय ये नहीं, हाय वो नहीं होगा, तो कभी भी बड़े काम नहीं हो सकते। और जो खास तौर पे मेन लोग होते हैं ना, जिन्होंने ये काम करना होता है, उनको अपने इर्द गिर्द ऐसे ट्रबल शूटर्स चाहिए होते हैं। तो लिख लें, अबू बकर ट्रबल शूटर थे। ट्रबल शूटर का मतलब कि मसाइल को हल करने वाले थे। आज कई लोग ट्रबल मेकर्स होते हैं। अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई शख्स आपको मिल जाए, ये दुआ किया करें। और इतने अच्छे आपके मतलब टर्म्स थे, पीआर आपका इतना प्यारा था आज की जुबान में, कि हर मामले में लोग उनसे मशवरा करते। और यूं भी इनके पास आकर बैठते थे, इनमें कुछ ऐसी बातें थी जो दिलों को मोह लेती थी। अब क्या हुआ, एक अकेला दो ग्यारह। अभी तक तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही जाकर थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, अबू बकर साथ मिल गए, तो एक से दो, दो से ग्यारह हो गए। इस्लाम फैलाने में दाहिये दीन बन गए अबू बकर सिद्दीक। जो लोग इनकी सूझबूझ और ईमानदारी से पहले से मुतासिर थे, उनको जब इन्होंने दीन की बातें बताई, इस्लाम लाने की दावत दी, तो बहुत लोगों ने तो सिर्फ यही सोच के मान लिया कि अबू बकर सिद्दीक ठीक बात कहते हैं। देखिए, पहले अपनी रेपुटेशन बनाए, किरदार। जैसे पीछे भी जुमला शायद आपने सुना होगा कि नबी पहले सादिक और अमीन कहलाए, फिर कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी। आज इस उम्मत को पहले सादिक और अमीन का टाइटल लेना पड़ेगा, फिर लोग आपसे मेरे से बात सुनेंगे। चले, हमको बड़े दुनिया के दावा प्लेटफॉर्म पे नहीं भी दीन की दावत दे रहे, तो आपके मेरे घर में एक बहन होने के नाते, एक नंद होने के, एक भाभी होने के, एक बहू होने, एक सास होने, बीवी होने के नाते से हमारी बात लोग कब मानेंगे, जब हमारा किरदार अच्छा होगा। चले, आपको कह देती हूँ, नया नया कुरान आपकी जिंदगी में आया है, अभी तो बड़ा फास्ट सेशन है ना, जब आप सबीलुल जन्नत सुनेंगे। मैं आपको एक सिर्फ कंपैरिजन दे रही हूँ, हमारा ये पारा एवरेज 2 आवर 30 मिनट का है। कुछ पारों में अगर 5-4 मिनट आगे जाते हैं ना, तो कुछ में कम भी है। और हमको ये फीता लेके नाप के नहीं बैठते कि ये स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है, ये 2 घंटे 30 पे खत्म होगी। ये जो ऊपर नीचे होती है ना, ये लाइवली टच होता है। ठीक है, अब आप मैं जब इस चीज को ले रहे हैं, तो एक पारा करते हैं, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही बिनेमती ही ततिमु सालेत, अभी तक DQ25 का हर पारा एक दिन में हुआ है। पहला पारा हमारा स्केड्यूल हमेशा ही 2 दिन का होता है, वो भी पूरा 2 दिन में, जैसे तब बल्कि कम वक्त में हो गया था, ये बहुत कम होता है। कुछ पारे तो ऐसे हैं वो मांग रहे होते हैं हमसे। अब एक पारा 2.5 घंटे में, तो जब सबीलुल जन्नत में आप आएंगे ना, तो पहला पारा आपका 15 सेशन है, 30 घंटे में आप एक पारा करेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, 2 और 30 में जितना हम सीख रहे हैं ना अभी एक पारे से, इसे 15 गुना ज्यादा। ये मैंने आपको एक एवरेज बताई है, तो दुआ मांग लीजिए। ये पारे भाग रहे हैं, खड़ियां भाग रही हैं। लिंक आपको जो ही मिल जाए, आप सब जो ऑन साइट वाले, आपको भी लिंक देंगे हम। सबसे पहले अपना नाम रखिए कि सबसे पहले मैं हूँ, जद्दा से करने वालों में मैं हूँ। और हर साल होता भी ऐसे ही है, जहाँ लाइव दौरे कुरान होता है ना, एक तो वहाँ क्लास शुरू होती है, यानी 1 दिन की 2 दिन की 3 की, ये बाप का नसीब है। आप मांगिए अल्लाह से, अल्लाह आपको मौके दे देगा। उसका तरीका कार क्या होता है, वो बात की बात है। और दूसरी ये कि जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर होते हैं ना, तो जो वहाँ नहीं पहुँच सकते, वो फिर ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करते हैं। सबसे ज्यादा वहां से लोग आते हैं जहाँ दौरे कुरान होता है, इल्ला माशाल्लाह। तो बहरहाल ये दीन गली गली फैलेगा। एक अबू बकर मिल जाए और मोहम्मद मुस्तफा जैसी तड़प और बखा की कैफियत दिल में रखने वाला शख्स हो, तो अल्लाह इस दीन को फैला देता है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अल्लाह ने 10 लोग, जिनको आज आप और मैं अशरे मुबशरा के नाम से जानते हैं, 10 वो लोग जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरियां मिली, इस पे कोर्स भी हमारा अशरे मुबशरा के नाम पर, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, तलहा बिन उबैदुल्ला रदिल्लाहु अन्हु, और जराह के बेटे अबू उबैदा और अबू अरकम के बेटे अरकम, ये मुसलमान होने लगे। और इनमें से अक्सर उन 10 लोगों में हैं जो अशरे मुबशरा कहलाए। फिर तो मर्द और औरतें मुसलमान होने लगीं। और आपकी दावत जवान लोगों में, यंग लड़कों में और औरतों में जल्दी से फैली, क्योंकि ये पिसे हुए थे उस दौर में, ओप्रेस थे। जो औरतें ईमान लाईं उसमें आपकी अपनी बेटियां भी थीं और अबू बकर की अपनी बेटियां भी थीं। तो बस इस पे यहाँ रुकते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट फेज में कि क्या हुआ। लेकिन बात यह है कि प्यारे नबी को अल्लाह ने एक खूबसूरत तरीके से दीन दिया।